नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट वर्ल्ड्स ग्रेट लिटरेचर में। मैं हूं आपका कहानी वाला लड़का सिद्धांत। इस पॉडकास्ट में आप सुनते हैं दुनिया भर के महान राइटर्स की कल्पना और कलम से निकली कुछ खूबसूरत, रोचक, रोमांचक, कभी दिल को छूने वाली तो कभी सिरहन पैदा करने वाली अमर कहानियां और हल्का सा राबता राइटर के साथ में। चलिए देखते हैं क्या है हमारे आज के पिटारे में। आज जिस लेखक की हम कहानी लेकर आए हैं, ये उर्दू के मजाहिया यानी ह्यूमरिस्ट वर्ल्ड में मार्क ट्वेन और स्टीफन लीकॉक जैसा दर्जा रखते हैं। पेशे से एक डॉक्टर रह चुके हैं और इन्होंने पाकिस्तानी फौज के साथ भी काम किया है। ये हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान। रहमान का जन्म 9 नवंबर 1920 में रोहतक के एक छोटे से गाँव कलानौर में हुआ था। उन्होंने अपनी MBBS की पढ़ाई किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से 1942 में की और एडिनबर्ग से 1952 में पीछी। वो अपने स्कूली दिनों से ही ह्यूमरिस्ट कहानियां लिखते थे। उनकी कहानी खयाम नाम की एक मासिक साहित्यिक पत्रिका में छपती थी। उनकी पहली किताब किरणें 1938 में पब्लिश हुई थी, जब वो एक मेडिकल स्टूडेंट थे। उनकी कहानियों में कुछ करेक्टर हमेशा आम रहते हैं, जैसे रजिया, शैतान, हुकूमत आपा, बड़ी, जज साहब इत्यादि। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उन्होंने इंडियन आर्मी के मेडिकल कॉर्प्स को ज्वाइन किया और 1947 में बंटवारे के बाद वो पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बन गए और जनरल की पोस्ट तक पहुंचे। रहमान अपनी मौत मार्च 2000 तक लिखते रहे। उनकी लेखनी ने उर्दू साहित्य को एक नया आयाम दिया। उनकी मिलिट्री और सिविलियन सर्विसेज के लिए पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने उन्हें हिलाले इम्तियाज से नवाजा। आज सुनते हैं उनकी लिखी एक छोटी कहानी जिसका नाम है तावीज। चार बजे शैतान चाय पीने आए। जब हम पीकर बाहर निकले तो दफातन उन्हें महसूस हुआ कि चाय ठंडी थी, चुनाचे हम उनके हॉस्टल गए। वहां खौलती हुई चाय पी गई, लेकिन वो मुतमईन न हुए। मुंह बनाकर बोले कि यह चाय भी नामुकम्मल रही, क्योंकि उसके साथ में लवाजमात नहीं थे। तय हुआ कि किसी कैफे में जाकर बाकायदा चाय पी जाए। मुसीबत यह है कि शैतान को हर वक्त चाहसी लगी रहती है और वो उन लोगों में से है जिन्हें दिन में दो मरतबा कयामत का सामना करना पड़ता है। एक तो जब अली उल सुबह 9-10 बजे उठते हैं तो उनके सामने दुनिया अंधेर होती है और वो सोचते हैं कि मुनहसर मरने पर हो जिसकी उम्मीद। लेकिन चाय की चंद प्यालियों के बाद उन्हें यकायक पता चलता है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। यही तमाशा 4 बजे चाय के वक्त होता है। 3:30 बजे जिंदगी से बेजार होते हैं और 4:30 बजे उन जैसा मस्करा मिलना मुहाल है। अगर वो चाय की दरियाफ्त से पहले इस दुनिया में होते तो खुदा जाने उनका क्या हाल होता। हम साइकिलों पर टहलते टहलते कैफे में पहुंचे जहां हमें अक्सर बड़ी मिला करता था। अंदर जाकर देखा तो सब कुछ सुनसान पड़ा था। फकत एक कोने में एक खफीफ ओ नजार नौजवान बैठा चाय पी रहा था। हम उसके करीब जा बैठे। हमारी तरफ उसकी पुश्त थी। सिस्कियों की आवाज ने हमें चौंका दिया। वो सबड़ सबड़ रो रहा था। चेहरे से फैलते हुए आंसू सैंडविचेस, केक के टुकड़ों और चाय की प्याली में टप टप गिर रहे थे। गौर से देखते हैं तो ये अमजद था। अमजद हमारा पुराना दोस्त था जो मुद्दत से लापता था। हम उसकी मेज पर जा बैठे। बिसुर बिसुर कर उसने इलेक सरेक की और फिर रोने में मसरूफ हो गया। शैतान बोले, मौलाना अगर आप सैंडविचेस या चाय के सिलसिले में रो रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि कम अज कम यहां सबके सामने रोइए, क्योंकि जिस शख्स ने ये चीजें तैयार की हैं वो सामने खड़ा देख रहा है और वो बेहद हसास और जज्बाती है, उसे शदीद अजियत पहुंचेगी। लेकिन अमजद बसतूर मसरूफ रहा। शैतान ने पूछा, खान बहादुर साहब क्या हाल है?
कौन से खान बहादुर साहब का?
अमजद ने बुरा मुंह बनाया।
कोई से खान बहादुर साहब का? ओह,
हमने बहुतेरी कोशिश की किस नलायक से बात करें, लेकिन कुछ ना बना। इतने में बड़ी आ गया। हमने लगातार रोते हुए अमजद का तारुफ लगातार हंसते हुए बड़ी से कराया। अब बड़ी संजीदगी से
वजह पूछी गई और अमजद ने बताया कि इसकी सेहत रोज बरोज गिरती जा रही है, बल्कि बिल्कुल ही गिर गई है। उसकी आंखों के सामने कभी तारे नाचते हैं और कभी अंधेरा छाया रहता है। वो अपनी आखिरी इम्तिहान में मुद्दत से फेल हो रहा है, लगातार फेल हो रहा है। अगर मेहनत करे और पर्चे अच्छे हो जाए तब भी फेल हो जाता है, और अगर पर्चे खराब हो जाए तब भी। इसकी किस्मत हमेशा उसे धोखा देती है। वो किसी पर आशिक भी है। महबूब ने पहले तो सब कुछ कह सुन लिया और बाद में बड़े मजे से उसे डबल क्रॉस कर दिया। आजकल महबूब बिल्कुल खामोश है। इसके यहाँ आना जाना भी मुद्दत से बंद है, क्योंकि उनके यहाँ एक बेहद भारी भरकम और खूंखार कुत्ता कहीं से मंगाया गया है, जो अमजद को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बल्कि इससे खफा रहता है। महबूब के यहाँ एक और साहिब की आमद और रफ्त भी शुरू हो गई है, जो शायद रकीब रूस यहाँ बनने वाले हैं। महबूब के अब्बा अमजद को यूं ही सब बेकार लड़का समझते हैं और उन्होंने शादी से इनकार कर दिया है, क्योंकि अमजद कुछ नहीं कमाता। शैतान और मकसूद घोड़े की तरह शहजादा है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इसका किसी चीज को दिल ही नहीं करता, बिल्कुल जी नहीं चाहता। यहां तक कि चाय सामने रखी है और पीने को जी नहीं चाहता। गुफ्तगू में मौजू बदलते रहे और हमने अमजद से लेकर अमजद तक गुफ्तगू की। शैतान बोले, भाई तुम्हारी मुसीबतें तो इतनी है कि एक गार्डियन एंजल तुम्हारा काम नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए तो फरिश्तों का सिंडिकेट बैठेगा। बड़ी ने कहा, तुम आज से वर्जिश शुरू कर दो, हल्की फुल्की और मुक्कवी गीजा खाओ, अली उल सभा उठकर लंबे लंबे सांसें लिया करो, कुव्वत इरादी पैदा करो, खूब मेहनत करके इम्तिहान पास कर लो, मुलाजमत जरूर मिल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर अमजद ने और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। अब तो वो बकायदा भौ भौ रो रहा था। आखिर तय हुआ कि अमजद की सचमुच मदद की जाए और कल फिर यही मुलाकात हो। अगले रोज हम सब वहीं मिले। इत्तेफाक से कॉलेज की चंद लड़कियां भी यहां बैठी थी। ऐसे मौके पर मैं हमेशा यूं जाहिर किया करता हूं जैसे मैं शैतान के साथ नहीं हूं, क्योंकि हमारे कॉलेज की लड़कियां शैतान को पसंद नहीं करती। जितनी देर वो हमारी तरफ देखती रहीं, मैं किसी और तरफ देखता रहा। उनके जाने पर गुफ्तगू शुरू हुई। अमजद, तुम मौसीकी भी अलविदा हो जाओ। शैतान बोले, ये प्याजी साड़ी वाली लड़की बड़ा अच्छा सितार बजाती है, तुम्हें कोई साज बजाना आता है? हाँ, कौन सा? ग्रामोफोन। तब तुम मौसीकी को पसंद नहीं करोगे। अच्छा ये बताओ कि जब तुम आखिरी मर्तबा उस लड़की से मिले तो क्या बात हुई थी?
मैंने उसे शादी के लिए कहा था, और ये कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना कुछ कमा सकता हूँ, ना किसी काबिल हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ और ना कुछ कर सकूँगा।
फिर उसने कुछ भी नहीं कहा और आज तक खामोश है।
तुम्हारे होने वाले ससुर अच्छे खासे कब्र रसीदा बुजुर्ग हैं। मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है। जितने तुम शक्ल और सूरत में बख्शे हुए हो उतनी ही वो हसीन है। तुम्हें एहसास कमतरी हो जाएगा। भला कभी तुम्हारी खातों किताबत भी हुई थी?
हुई थी,
कहकर अमजद ने खतूत का पुलिंदा मेज पर रख दिया। शैतान ने जल्दी से खतूत को सूंघा और बोले,
जल्दी है इसलिए सारी बातें तो कभी फुर्सत में पड़ेंगे। अलबत्ता मैं खतूत को तरतीबवार रखकर सिर्फ अलकाब पढ़कर सुनाता हूँ।
तरतीबवार अलकाब ये था, जनाब अमजद साहेब, अमजद साहेब, अमजद प्यारे, अमजद मेरे अमजद, अमजद डार्लिंग, अमजद डार्लिंग मेरे अमजद, प्यारे अमजद, अमजद, अमजद साहेब, जनाब अमजद साहेब। उधर अमजद ने फिर रोना शुरू कर दिया। शैतान बोले, मैं रात भर सोचता रहा हूं कि तुम्हारे लिए क्या किया जाए। यहां से बहुत दूर जंगलों में एक पहुंचे हुए बुजुर्ग रहते हैं, इन तक मेरी रसाई हो सकती है। अच्छे तावीज गुंडों पर किस किस का एतिकाद है?
सिवाय बड़ी के हम सब मोतकिद थे। बड़ी ने पूछा, ताबीज गुंडे क्या होते हैं?
क्या अमेरिका में ताबीज वगैरह नहीं होते?
नहीं तो?
जब बड़ी को सब कुछ बताया गया तो वो बोला, हमारे यहाँ गुडलक के लिए शगुन होते हैं, मसलन स्याह बिल्ली को देखना, ये सड़क पर घोड़े की नाल मिल जाना, ये ताबीज वगैरह नहीं होते। लेकिन मुझे शगुनों पर एतिकाद नहीं, क्योंकि एक मरतबा मैं एक लड़की से शादी करना चाहता था। नजूमी ने मुझे बताया कि अगर मुझे अगले इतवार को
गुरूब आफ्ताब से पहले सड़क पर घोड़े की नाल मिल गई तो बहुत अच्छा शगुन होगा और गालिबन उस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी। अगले इतवार को मैंने मुंह अंधेरे उठकर सड़कें नापना शुरू कर दी। दोपहर हुई, सही पहर आया, घोड़े की नाल तो क्या, किसी गधे की नाल भी न मिली। आखिर मैंने अस्तबलों का रुख किया, वहां भी नाकामी हुई। शाम होने पर मैं बहुत घबराया। हमारे पड़ोस में एक घोड़ा रहता था। मैंने चंद औजार उठाए, अपने भाई को साथ लिया और चुपके से इस घोड़े को बांध बूंध कर रख दिया। घोड़ा हरगिज रजामंद नहीं था, लेकिन हमने जबरदस्ती उसकी नाल उतार ली। बाहर निकालकर जो देखा तो सूरज गुरूब हो रहा था। अगले रोज मैंने उस लड़की से शादी के लिए कह दिया और उसने किसी और से शादी कर ली। तब से घोड़े की नाल से मेरा एतिकाद उड़ गया। क्या लगवियत है, अगर घोड़े की नाल उतनी ही मुबारक चीज है तो घोड़ों को बेहद खुश नसीब होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा वास्ता मशरिक के आमेलों से नहीं पड़ा, यहाँ तो ऐसे ऐसे अमल किए जाते हैं कि सुनकर यकीन नहीं आता। शक्लें बदल जाती हैं, तकदीरें बदल जाती हैं, यहाँ तक कि दुनिया बदल जाती है।
अच्छा,
हाँ, तुमने पीरों फकीरों और सन्यासियों के मुतालिक नहीं पढ़ा?
मैंने फिल्मों में देखा है कि हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी पुरअसरार बातें होती हैं, यहाँ के फकीर कुछ पढ़कर एक रस्से पर फूंक देते हैं, रस्सा सीधा खड़ा हो जाता है और वो रस्से पर चढ़ जाते हैं, रात को वो मेखों के बिस्तर पर सोते हैं।
यकीनन तुम खुद देख लोगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अमजद के लिए इन बुजुर्ग से तावीज़ हासिल करूँ, अगरचे ये बहुत मुश्किल काम है। अव्वल तो वो बुजुर्ग किसी को तावीज़ देते ही नहीं, अगर कभी खुश होकर देते हैं तो सिर्फ साल में एक आध मरतबा। लेकिन मैं अपनी सारी कोशिशें सिर्फ कर दूंगा, उनका तावीज़ जादू से कम असर नहीं रखता। नामुमकिन से नामुमकिन बातें मुमकिन हो जाती हैं। अगर मिल गया तो अमजद की तकदीर बदल जाएगी और अमजद तुम्हें मेरी हिदायत पर अमल करना होगा। अब तुम्हारे लिए सिर्फ दो बातें रह गई हैं, या तो मेरी हिदायत पर अमल करो और या फिर उन पर अमल करो।
शैतान ने एक लंबी चौड़ी फेरिस्त बनाई। अमजद दो दिन भूखा रहा, सिर्फ उसे बकरी का दूध और छुहारे मिलेंगे। वो किसी से बात नहीं करेगा, दूसरे रोज शाम को हजामत कराएगा, फिर सफेद लिबास पहनकर इतर लगाकर रात भर एक वजीफा पढ़ेगा। अगले रोज तालाब में खड़ा होकर दुआ मांगेगा और सूरज की पहली शुआ के साथ उसके बाजू पर ताबीज बांध दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। अमजद ने फकत एक एतराज किया, वो ये कि वो सिर पर उस तरह हरगिज नहीं फरमाएगा, अलबत्ता कैची से हजामत करा देगा। शैतान एक हफ्ते तक गायब रहे, फिर एकाएक तावीज लेकर नाजिल हुए। पहले तो उन बुजुर्ग के मुतालिक सुनाए कि उन्होंने अपनी सारी उम्र जंगलों में गुजारी है, बहुत कम खाते हैं, बोलते तो बिल्कुल नहीं, कोई शख्स उनके पास तक नहीं फटक सकता, उनके कमालात मोजज़ों से कम नहीं, उनसे तावीज़ हासिल करना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन शैतान अपनी खुशकिस्मती और महज इत्तेफाक से कामयाब हुए हैं। हम उनकी बातों से बहुत मुतासिर हुए। शैतान ने रुमाल खोल कर हमें तावीज़ की ज़ियारत कराई। तावीज़ मोमजामे में लिपटा हुआ था और इससे अंबर की हल्की हल्की महक आ रही थी। मैंने और अमजद ने उसे बोसा दिया और आंखों से लगाया। बड़ी ने भी हमारी तकलीद की। अमजद दो रोज शैतान के साथ रहा, तीसरे रोज उसके दहाने बाजू पर ताबीज बांधा गया। शैतान एक फातिहाना अंदाज में बोले, लो भाई अमजद, समझ लो कि आज तुम्हारी किस्मत जाग उठी, अब इस मुकद्दस ताकत के करिश्मे देखो। हमने चंद रोज बाद अमजद को देखा, बिसुड़ते हुए चेहरे पर अब मुस्कुराहट खेल रही थी, लिबास भी पहले से बेहतर था। आहिस्ता आहिस्ता तावीज़ की बरकत से तब्दीलियां आनी शुरू हो गई। अब हर काम के लिए अमजद का जी करने लगा। वो चुस्त हो गया था, अब या तो वो निहायत शोक टाई लगाता और या रंगीन स्कार्फ पहनता। हमेशा उसके कोट के काज में एक मुस्कुराता हुआ फूल अटका होता। अमजद के इम्तिहान में एक हफ्ता रह गया था, मैं और शैतान उसके यहाँ गए, उसकी दो तीन मन पुख्ता किताबों को देखा। शैतान कहने लगे कि किताबें बहुत ज्यादा हैं और वक्त बहुत थोड़ा है, मेरे ख्याल में कुछ हम पढ़ते हैं कुछ तुम पढ़ो, बाकी किताबें बड़ी पढ़ेगा। अमजद ने कहा, मजाक मत करो, कोई और तदबीर बताओ। शैतान ने मशवरा दिया कि किताबों के खुलासे नोट और ऐसी वैसी चीज़ें इम्तिहान में साथ ले जाओ और खूब दिल खोल कर नकल करो। अमजद नवाना
शैतान बोले, अरे मियां, ऐसा ताबीज बाजू पर बंधा है कि नकल तो नकल, अगर कोई संगीन तरीन जुर्म कराओ तब भी पता न चले। इसका साया हमेशा तुम्हारे सर पर रहेगा।
गरज की अमजद की खूब हिम्मत बंधाई गई और उसने इम्तिहान में खूब नकल की, लिहाजा पर्चे निहायत अच्छे हुए। नतीजा निकला तो अमजद अव्वल आया। अब ताबीज पर रेशमी गुलाफ चढ़ाया गया।
बड़ी ने ताबीज को कई मरतबा चूमा। मेरा जी बुरी तरह चाह रहा था कि एक ऐसा ही ताबीज मुझे भी मिल जाए।
अब सवाल मुलाजमत का था। एक जगह दरखास्त तो दे दी गई, लेकिन उम्मीद किसी को भी ना थी। कुछ दिनों बाद बोर्ड के सामने इंटरव्यू था। बोर्ड के सदर नजदीक ही रहते थे। शैतान ने अमजद को मशवरा दिया कि अगर तुम सदर के साहिब के सामने कई मरतबा जाओ तो ताबीज की बरकत से वो इस कदर मुतासिर होंगे कि फौरन मुंतकब कर लेंगे।
अमजद ने अगले रोज से उनका ताकुब शुरू कर दिया। उनके घर गया, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो मुलाजमात के सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहते। जो कुछ होगा इंटरव्यू के वक्त सुना दिया जाएगा। अमजद मुंह लटकाए वापस आया। शैतान ने डांटा कि फिर ये ताबीज किस वास्ते बांधे फिर रहे हो, पीछा मत छोड़ो उनका। अगले रोज अमजद फिर उनकी कोठी पर जा खड़ा हुआ। 10 बजे वो दफ्तर गए, ये साथ साथ गया। 4 बजे वापस आए, ये साथ साथ वापस आया। क्लब गए, रात को पिक्चर गए, अमजद साय की तरह साथ रहा। अगले रोज वो शॉपिंग के लिए गए, अमजद भी शॉपिंग के लिए गया। वो स्टेशन पर किसी से मिलने गए, अमजद भी गया। गरज की बाजार, डाकखाना, कैफे, सिनेमा, बागे, जहां जहां भी वो जाते ये साथ रहता। यहां तक कि वो 50-60 मील दूर एक जगह गए, अमजद भी 50-60 मील दूर उसी जगह गया। उन्होंने भतेरा कहा कि मैं वादा करता हूं कि इंटरव्यू में तुम्हारा जरूर ख्याल रखूंगा। लेकिन शैतान की हिदायत के मुताबिक अमजद बोला कि वादा नहीं, अभी ले लीजिए। उन्होंने उसे धमकाया चमकाया भी, लेकिन इस पर कोई असर ना हुआ। कहने लगे कि मैं सारी उम्र इसी तरह आपके साथ रहूंगा। आखिर वो इस कदर तंग आए कि उन्होंने अमजद को मुंतखब कर लिया। इस कामयाबी पर एक जबरदस्त दावत हुई। ताबीज पर अब पीतल का खोल चढ़ाया गया और हर वक्त उसे मुअत्तर रखा जाता था। शैतान की मार्फत उन बुजुर्ग के लिए कुछ नजराना भी भेजा गया, जिसे उन्होंने बामुश्किल कबूल किया। मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैं भी एक तावीज अपने लिए बनवाऊंगा। बड़ी ने भी शैतान से यही ख्वाहिश जाहिर की। अब इस लड़की की बारी आई। सबसे पहले तो वहां रसाई का सवाल था। उनका नया कुत्ता निहायत ही हैवतनाक और आदमखोर किस्म का था। उसे देखकर ही अमजद की रूह खफा से उनसारी से परवाज कर जाती थी। बड़ी ने मशवरा दिया कि कुछ खिला पिला दिया जाए जिससे वो अनालिल्ला हो जाए। लेकिन वो कुत्ता कुछ ऐसा बुरूज का वाक्य हुआ था कि ऐसी वैसी चीजों को सूंघता तक नहीं था। शैतान ने एक मोटा सा डंडा अमजद को दिया और कहा कि उसे हाथ में लेकर जाओ और मार मार कर कुत्ते का भरता बना दो। अमजद कांप उठा, गिड़गिड़ा कर बोला, खुदा का वास्ता मैं ये हरगिज नहीं कर सकता। शैतान ने ताबीज छूकर कहा, जानते भी हो ये क्या चीज है तुम्हारे बाजू पर? ये ताबीज हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। हाँ, तुम शेरों से दिल लगी करते फिरो, बाल तक बाका ना होगा। काफी लंबी बहस के बाद अमजद माना। अगले रोज अले उल सुबह अमजद हाथ में डंडा लेकर उनके यहाँ गया। कुत्ता बाग में चहलकदमी कर रहा था। अमजद ने कुत्ते की ऐसी मरम्मत की कि तबीयत साफ कर दी। इसी दिन से अमजद और कुत्ता बड़े गहरे दोस्त बन गए। अमजद को देखकर वो न सिर्फ दुम हिलाता बल्कि बाकायदा मिजाज पुरसी करके साथ साथ चलता। वो साहिब जो घर आया करते थे उनके लिए भी यही नुस्खा पेश किया गया, लेकिन बड़ी ना माना। बोला कि कुत्ते और इंसान में कुछ तो फर्क होना चाहिए, बेहतर होगा कि पहले उन्हें धमकाया चमकाया जाए। वो साहिब कदमे अमजद से दुगने थे। अमजद पहले तो बहुत डरा, लेकिन जब शैतान ने डांट कर कहा कि इस तरह वो अपनी नहीं बल्कि तावीज की तौहीन कर रहा है और उसे कोई छू तक नहीं सकता, तो अमजद इन साहिब से मिला और उन्हें साफ साफ बता दिया कि खबरदार जो आइंदा इस घर में कदम रखा। उन्होंने हैरान होकर पूछा कि मियाँ तुम हो कौन? वो बोला कि मैं कोई भी हूँ, लेकिन ये वाजी रहे कि मैंने आप जैसे बहुत सू को सीधा रखिया है। बस खैरियत इसी में है कि आइंदा आप इस घर का रुख ना करें। अमजद ने कुछ इस तरह गुफ्तगू की कि वो साहेब वाकई सहम गए। अमजद ने चलते वक्त कहा कि मेरा इरादा तो कुछ और था, लेकिन फिलहाल सिर्फ इंतवाह करने पर इक्तफा करता हूँ। आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे। इस दिन के बाद वो साहेब ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। अमजद लड़की से मिला। खुदा जाने कि क्या बात हुई, लेकिन सनीचर को इन दोनों को मैटिनी पर देखा गया। लड़की वाकई निहायत प्यारी थी। अमजद उसके सामने बिल्कुल हुक्म का गुलाम मालूम हो रहा था, लेकिन खूब अकड़ अकड़ कर चल रहा था। बड़ी तो अब ताबीज़ पर बाकायदा ईमान ले आया था। बोला कि मैं ये सब कुछ लिखकर अमेरिका के सबसे मशहूर साइंस के रिसाले में भेजूंगा। मैंने इस कदर जूद असर और करामत अमल आज तक नहीं देखा। ये किसी जादू से कम नहीं। मोजज़े अभी ख़त्म नहीं हुए। मशारिक वाकई नहायत पुर असरार जगह है। तावीज़ पर चांदी का खोल चढ़ाया गया। हर दूसरे तीसरे हम सब उसे चूमते और आँखों से लगाते। अब अमजद की तमाम मुश्किलें हल हो चुकी थीं। सिर्फ उसकी शादी बाकी थी, लेकिन ये मुश्किल सबसे कड़ी थी, क्योंकि उसके होने वाले ससुर वाकई नहायत गर्म खुश्क इंसान थे। अमजद ने कई मरतबा पैगाम भिजवाया, लेकिन हर मरतबा पैगाम वापस लौटा दिया गया। शैतान ने अमजद को यकीन दिलाया कि इस तावीज़ के सामने वो बुजुर्ग तो क्या, उनके फरिश्ते भी सर झुकाएंगे। तुम आज ही उनसे मिलो और बगैर किसी तमहीद के उनसे सब कुछ कह डालो। अमजद ने यही किया। बुजुर्ग ने मुलाकात की वजह पूछी। अमजद ने साफ साफ कह दिया कि किबला, मैं आपके ऑनररी फर्जाद बनना चाहता हूँ और आपकी दुख्तर नेक अख्तार से अकद का ख्वाहिशमंद हूँ। इस मरतबा आप हरगिज़ इनकार नहीं कर सकते। अगर आप बहस करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। पहले आपको मेरे शहजादेपन पर एतराज़ था, सो अब ये खासकर बाकायदा मुलाजिम है। अगरचे तनख्वाह सिर्फ 250 रुपये माहवार है, लेकिन ऊपर की आमदनी काफ़ी है। माना कि यह बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन गुस्ताखी माफ। जब आपकी शादी हुई थी तब आप क्या कमाते थे और तब तक आपके ख्यालात क्या थे, खुसूसन अपने ससुर साहब के मुतालिक? यकीनन आप बिल्कुल मेरी तरह होंगे। और फिर शुरू शुरू में 250 रुपये इतनी बुरी तनख्वाह नहीं, जबकि ऊपर की आमदनी भी शामिल हो। शायद आप ये फरमाएंगे कि आप अपने रिश्तेदारों से इस सिलसिले में दरियाफ्त करना चाहते हैं, सो ये बिल्कुल गलत है। मैंने अपने किसी रिश्तेदार से नहीं पूछा, और फिर रिश्तेदार बिल्कुल उल्टे सीधे मशवरे देंगे। ये एक ज़ाती मामला है, इसमें किसी और का दखल नहीं होना चाहिए। आज आपको हाँ करनी होगी। इसी तरह अमजद ने वो दहाने और बाएँ हाथ दिए कि बुजुर्ग को हथियार डालने पड़े, और हाँ करनी ही पड़ी। इसी शाम को एक भारी जश्न मुनाकिद हुआ। ताबीज़ पर सोने का खौल चढ़ाया गया। शैतान की मार्फत इन पहुँचे हुए बुजुर्ग को नजराना भेजा गया। मैंने और बड़ी ने शैतान की बड़ी मन्नतें की कि किसी तरह एक एक ताबीज़ हमारे लिए भी ला दो, ताकि हमारे भी दिन फिर जाएं। शैतान ने वादा किया कि वो कोशिश करेगा। हम तकरीबन हर रोज़ ताबीज़ को आँखों से और दिल से लगाते। मैं और बड़ी कैफ़े में बैठे अमजद और मिसेज अमजद का इंतज़ार कर रहे थे। हम बड़े मसरूर थे, क्योंकि शाम को शैतान ने तावीज़ लाने का वादा किया था। हम दोनों दिल ही दिल में अपने मुस्तकबिल के मुतालिक प्रोग्राम बना रहे थे कि अमजद और मिसेज अमजद पहुँचे। आज अमजद एक ऐसा दिलेर, निडर और बेपरवाह नौजवान नज़र आ रहा था, जिसकी आंखों में चमक थी, जिसके दिल में उमंगे थी, जिसने एक बहुत अच्छा सूट पहन रखा था। बातों बातों में इस शाम का भी जिक्र हुआ, जब अमजद को हमने उसी जगह रोते पिटते देखा था। मिसेज अमजद के फिराक में सिर्फ चंद महीनों में क्या से क्या हो गया, सिर्फ एक मुकद्दस अमल की बदौलत, इस तावीज़ की बरकत से जो अमजद के बाजू पर बंधा हुआ था। शैतान ने भी दोस्ती का हक अदा कर दिया था। ना जाने किन किन मुसीबतों के बाद ये तावीज़ दस्तयाब हुआ होगा। अगर आज अमजद के पास ये तावीज़ ना होता, तो गालिबन वो फिर वहीं बैठा सैंडविचेज और केक के टुकड़ों पर आंसू बिखेर रहा होता। और अब हमें भी ऐसे तावीज़ मिलेंगे। हमें अपने ऊपर रश्क आने लगा। बार बार हम दरवाजे की तरफ देख रहे थे, शैतान के इंतजार में। बड़ी ने तावीज़ की ज़ियारत करनी चाहिए। अमजद ने नहायत हिफाजत से तावीज़ उतारा और बड़ी की हथेली पर रख दिया। बड़ी ने उसे चूमा, आंखों से लगाया और पूछा, भला तावीज़ों में क्या लिखा होता है? हमने कहा कि इबारत होती है। बड़ी समझ ना सका। उसे बताया गया कि मुकद्दस अल्फाज होते हैं और एक खास तरतीब से लिखे जाते हैं। उसने पूछा कि भला इस ताबीज में कौन से अल्फाज हैं। हमने लाई लमी जाहिर की। बड़ी कहने लगा, क्यों ना इसे खोल कर देखें। अमजद बोला, हरगिज नहीं, इस तरह बेअदबी होती है। मैंने भी कहा कि गुनाह होगा, लेकिन बड़ी ना माना। बोला, मुझे बड़ा इश्तियाक है, सारा गुनाह मेरे जिम्मे रहा। मैं निहायत अदब से इसे खोलूंगा और अल्फाज देखकर बिल्कुल इसी तरह बंद कर दूंगा, फिर तुम उसे बाजू पर बांध लेना। मैं भी सोचने लगा कि भला देखे तो सही
वो कौन से अल्फाज हैं जिन्होंने जादू की तरह असर दिखाया। मैंने भी बड़ी का साथ दिया। अमजद कहने लगा कि खोलने से तावीज़ की तासीर जाती रहेगी। बड़ी बोला, भाई सच पूछो तो अब इस तावीज़ ने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हें किसी मजीद तासीर की ज़रूरत नहीं है। हमने मिसेज अमजद से पूछा, उन्होंने इजाज़त दे दी। आखिर अमजद भी मान गया, इस शर्त पर कि अगर कोई गुनाह हुआ तो बड़ी के सर पर होगा। बड़ी ने बड़ी हिफाजत से खोल खोला और तावीज़ निकाला, फिर आहिस्ता आहिस्ता मोमजामा फूलने लगा। मेरी आंखों के सामने पहुंचे हुए बुजुर्गों के नूरानी चेहरे, फकीरों के मज़ार, सब्ज गलाफ, फूलों के हार, जलते हुए चिराग, मज़ारों के गनबद और खानकाहे फिरने लगे, जैसे अंबर और लोबान की खुशबू से सब कुछ महक उठा और पाकीज़ा रूहें हमारे गर्द मंडराने लगी। फरिश्तों के परों की फड़फड़ाहट सुनाई देने लगी। माहौल कुछ ऐसा मुकद्दस सा हो गया था कि मेरा दिल धड़कने लगा, होंठ खुश हो गए। बड़ी ने ताबीज़ का कागज़ खोला और पढ़ने लगा। मैं रह न सका, बड़ी बेसब्री से कागज़ छीन लिया। कागज़ पर शैतान की मखसूस तर्ज तहरीर में यह मिसरा लिखा था, आया करो इधर भी मेरी जा कभी कभी। तो दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करना ना भूलें। और अब आप चाहें तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैं कहानी वाला लड़का मिलता हूँ आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।